દેવલાલીમાં પૂજ્ય ભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું સમયસાર ગાથા 31 ઉપર પ્રવચન તારીખ 27/10/87 સળંગ પ્રવચન નંબર 213.
લાભ નથી તો પછી એનાથી લાભ થાય એવો પ્રશ્ન છે. ભગવાનની સ્તુતિનો ભાવ આવે એને સ્તુતિનો ભાવ આવે એને શંકર ભગવાન ની સ્તુતિ કરને કા જો ભાવ આતા હૈ જીવ કો તો લાયક જીવ કો દેવ પુરુષ શાસ્ત્ર પ્રત્યે કી ભક્તિ કા ભાવ આતા હૈ. રાગ શુભ રાગ એ ધર્મ નહીં હૈ. રાગ બુદ્ધ બનતા કારણ કે તો ગર્ભ કી જજરા કા કારણ નહીં હૈ. જો તત્વ જો સ્વરૂપ હૈ વો સ્વરૂપે ઉસકો જાનના ચાહીએ. ઉસસે વિપરીત જાને તો તત્વ વિગુણ હો. શુભ ભાવ હૈ તો શુભ ભાવ બંધ કા કારણ હૈ મુક્ત કા કારણ નહીં હૈ. આ એ બિના રહેતા નહીં હૈ અને મુક્ત કા કારણ હોતા નહીં. આ એ બિના રહેતા નહીં હૈ का कारण होता नहीं है. ऐसा जानना तो क्या करना ऐसा प्रश्न है तो उत्तर है आज आया कि अपना शुद्धात्मा को जानना. उसका नाम निश्चय की है वो धर्म का धर्म नहीं किया है. आत्मा को जानना से जानने से संबंध जरा प्रगत होता है. અગર આત્મા તો ફક્ત જાણના છે આત્મા તો માત્ર જાણનારા હૈ એસા જાણવામાં આવે છે. એસા જાણને મેં આતા હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ તે નહીં છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ભી ગે હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ગે છે પછી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપાધે
આત્મા ઉપાધે છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો
જ્યાં અનાથી મિથ્યા સૃષ્ટિ જીવ કો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કો ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કો રોક કર આત્મસ્વરૂપ હોના ઓર અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ કરના તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન મેં આત્મા ઉપાધે હોતા હૈ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન મેં આત્મા ઉપાધે નહીં હોતા હૈ. ક્યુકિ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન મેં જાનને મેં નહીં આતા હૈ આત્મા તો ઉપાધે કાસે હોય. જાનને મેં નહીં આવે તો સુધન જાનને કે બિના સુધન હોતા નહીં હૈ. એટલે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કો જીતને સે એક નયા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ હોતા હૈ. વો આત્મા કો જાનતા वो बाद में संकल्प दशा में आ गए. इंद्रिय ज्ञान भी व्यापार चालू होता है तो वो अतिथि ज्ञान प्रकट हुआ वो जानता है कि ये गेज है. कि ज्ञान में अनुभव के बाद इंद्रिय ज्ञान तो रहता है मगर इंद्रिय ज्ञान को साधक गे रूप जानता है. ज्ञान रूप नहीं जानता है. ज्ञान को जान लिया इसलिए वो गेय बन गया. जो ज्ञान को नहीं जानता है वो उसको ज्ञान जानता है. भ्रांति होती है ज्ञान को यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा को. जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को गेय जानता है. जो ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है वो इंद्रिय ज्ञान को गेय नहीं जानता है. ज्ञान को जानता है और उपाधि बुद्धि होती है. उपाधि आत्मा आ गए तब इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है और ये भी होता है. ये भी होता है और ये भी होता है. पहले तो आत्मा को प्रथम जानने का काम है. बात सब कंप्लीट है। विज्ञान दे जाता है, विज्ञान ये कौन कौन जानता है, ज्ञान ले जाना। क्या ज्ञान ले जाना? आत्मा का ज्ञान हुआ, उसने जान लिया। अरे तो ये मैं तो ज्ञान की भ्रांति करता था, वो निकला गे आगे मानता था ज्ञान तो मेरी परम थी। જો બદ્રીનાથ સૂચનામાં સૂચના બળવાન છે, સ્પષ્ટ કરી સમજાવો, મતિ જ્ઞાન અને સૂચનાન બે જ્ઞાન છે, એમાં મતિ કરતા જ્ઞાન બળવાન છે। મતિ જ્ઞાન તો આત્મસ્વરૂપ કઈ અને છૂટી જાય છે, એને લગ્ન થઈ જાય છે, ઉપયોગ નહીં રહેતા હૈ। ઓર મતિ પૂર્વક જો સૂચ્યાન પરિણત હોતા હૈ તો ઉપયોગ હો જાય, उनको उपयोग में नई का विकल्प समझता है, वो बाद में नई का विकल्प छूट जाता है। तो भाव शुद्ध ज्ञान चलित इंद्रिय ज्ञान चलित, शुद्ध ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कर सकते हैं, अतिद्रिय ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। बार बार वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब जो शुद्ध ज्ञान में क्यों उठता है तहां तक वो इंद्रिय ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान बेहू होता है, आत्मा का विचार गलत चीज, आत्मा का अनुभव अलग चीज है। अनुभव ज्ञान में होता है, विचार तो मानसिक ज्ञान में होता है, वो विचार तो पराधीन है, वो विचार तो ग्रामीण चीज है, यही का संबंध वाला है। जो निजी ज्ञान है वो यही का संबंध वाला है, और जिस ज्ञान को होता है आत्मा का संबंध वाला नया संबंध। જ્ઞાન બળવાન છે, બળવાન કેમ છે, એ તર્કનામાં શક્તિ કરવાની આમાં શક્તિશાળી છે, ઉપાધિક છે, ઉત્તમ જ્ઞાનની શ્રેણીમાં પણ સૂચના કામ કરે છે, ત્યારે કેવો જ્ઞાન થાય છે, એ સમય તત્વ પણ સૂચનામાં જન્મ થાય છે, એ કેવો જ્ઞાનનો જન્મ પણ સૂચનામાં થાય, મતિપૂર્વક પણ હોય, દર્શનપૂર્વક મતિ અને મતિપૂર્વક સૂજ્ઞાન હેન્ડઓવર કરે છે। દર્શન ઉપયોગ મતિ જ્ઞાન આપે છે આત્મા, અને મતિ જ્ઞાન આપે છે શુદ્ધ જ્ઞાન પણ આત્મા, ત્રણે આત્મા જ આપે છે, વિષયો ત્રણેનો એક છે, એનો એ રૂપ છે, અનુભવ અનુભવ થાય। પ્રશ્ન નંબર 1, ચાર પ્રશ્ન છે, ચાર વિભાવ સ્વભાવના દ્વારા પંચમ ભાવનું સ્વરૂપ બતાવતા બતાવવા પાછળ શું આશય હશે? સીધું પંચમ ભાવનું સ્વરૂપ બતાવી ન શકતા, નાસ્તિક બતાવી પ્રકારનો છે કે આ ચાર જે ભાવો છે પર્યાયના એ આત્મામાં નથી, એ નથી કે શા માટે શરૂ કર્યું, નથીની યાદ ન થયું હોત અને છે એની યાદ થયું હોત, અર્જીથી એ પંચમ ભાવ સ્વરૂપ છે, પારનામી ભાવ સ્વરૂપ છે, શુદ્ધ છે, એનું લક્ષણ એ ઉપાધિ છે, તો આ નાસ્તિકની વાત કરીને આગળ તો અસ્થિમાં આવ્યા, તો નાસ્તિકની વાત માનવી વાળો નથી, અસ્થિની વાત કરો કામ તો થઈ જાય, નો શિક્ષિકા પ્રશ્ન છે। ગુજરાતી ચલા ગુજરાતી ગુજરાતી ચલતા ક્યાં કાપી હિન્દી મેં ये जो औदयिक भाव भ्रम में छाई है, जो चार भाव पर्याय है, द्रव्यम तो नहीं है, नहीं। वो पर्याय है, वो चार भाव कर्म उपाधि से जन्मता है। सीधा आत्मा का वो कार्य नहीं है, कर्म का सद्भाव और अभाव उसमें नहीं पड़ता। तो ये जो चारे भाव है वो आत्मा में नहीं है, और बाद में पंचम भाव है, ऐसा कहने से क्या मतलब है? पहले सीधा पंचम भाव की बात, शुद्धात्मा की बात करना चाहिए। नहीं है, नहीं है तो धरती, धरती की बात क्यों करते हैं? धरती की बात करने में थोड़ी शंका पड़ती है कि नदी क्यों कहा, कुछ होगा। हाँ हाँ, शंकाकार का मैं प्रश्न करता हूँ, शंकाकार का प्रश्न मैं उठाता हूँ। प्रश्न प्रश्न चलता है, प्रश्न करने की ओर में कहता हूँ कि प्रश्न का अच्छे कहते थे कि जो चार भाव नहीं, नहीं तो नहीं, नदी तो नदी के लिए क्या जरूरत? कोई शंका है? हमको तो शंका नहीं है, प्रश्नकार कहते आप क्यों कहते हैं कि नदी? ये हमको पता ना कि शुद्धात्मा का अवलोकन लो, बस समझ लेंगे। समझे? नास्तिका का प्रश्न करने का क्या प्रयोजन है? ऐसा किसी कार्य ने प्रश्न किया, प्रश्न अच्छा है,
बहुत अच्छा है।
प्रयोजन कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न तो बहुत आता है मेरे पास, तो उसका उत्तर ये है कि जो चार भाव है वो आत्मा का है, आत्मा में होता है, आत्मा उसका कर्ता होता है, ऐसा शल्य दर्य अंदर में विख्यात होता है। उसको वो शल्य निकालने के लिए नृत्य कहना ठीक कहने का काम नहीं कुछ है, व्यवहार ने से चार भाव जीतता है, जीव प्रेमता है, कथन की कर्ता भोक्ता भी है, चार भाव से सहित है, ऐसा भी आता है लगता। तो उसको सल्य हो गया है कि चार भाव वाला जीव है, एक भाव तक पहुंचता नहीं है, अरे चार भाव वाला जीव है, इतना व्यवहार का कथन को नीचे मान लिया। और जब उसको निषेध करे तो निश्चय की प्राप्ति हो जाए। निषेध करने का कारण भक्ति शारीर के समझ में आ जाए, जो निषेध नहीं करे तो ये राग जीव है, राग जीव का है, राग का करता है, उदय भाव ऐसा संग दे गया है, इसलिए तेरा स्वभाव में, तेरे स्वभाव में रागवादी नहीं है, इसलिए तू राग का लगता नहीं है, इसलिए सचमुच राग तेरा ज्ञान का गे भी नहीं है। वो नास्तिक ने जब निषेध किया, निषेध कर दिया, तो निषेध करने से भक्ति अच्छी रूप से मालूम होता है। भक्ति नास्ति अनेकांते स्वरूप सत्ता, अनेक स्वरूप असत्ता, ये दो भाव बड़े एक पदार्थ की सिद्धि होती है। जमुना हाथ के अंदर डाबा हाथ की नाती है, डाबा हाथ की नाती है, नाती का क्या आपने कहा कि ये जमुना हाथ है उसमें डाबा हाथ की नाती है, ऐसा जमुना हाथ की अस्थि है। जमुना हाथ जमुना हाथ भी है और डाबा भी रूप ऐसा नहीं है। जीव में अजीव की नाती, जीव में पर्याय की नाती, जीव में राग की नाती, सामान्य जीव के अंदर प्रवर्तन मन का अभाव, सुल्तान नहीं है, मार्गना स्थान नहीं है, नहीं है ऐसा कहने का सही। वो पर्याय को आत्मा मान रखा है तो वो आत्मा नहीं है, उसमें जो नहीं है तो आत्मा कहाँ है? आत्मा नहीं है तो आत्मा कैसा है? ये पंचम भाव वाला बराबर क्या उसको ना पार नहीं या घात उत्सर्ग कर दिया है कि आत्मा परिणाम वाला ही होता है, कि आत्मा परिणाम ज्ञान होता है, सांख्य मत हो जाएगा। हाँ, और सांख्य मत के पाना नीचे भी अपना व्यवहार का प्रश्न कर लेता। जो परिवेश से रेट मानो तो सांख्य मत मानता है, तुम भी मानो तो सांख्य मत और तुम्हारे मत एक हो गया, नहीं हुआ। इसलिए कहना पड़ता है कि परिणाम तेरे पे नहीं है तो परिणाम की अस्थि होगी, मगर मेरे में नास्ती, परिणाम की अस्थि मेरे में नास्ती, इसी मेरी अस्थि। परिणाम की अस्थि मेरे में नास्ती, ऐसे मेरे में अस्थि, तो सब आ गए। कोई दोष आता वो तो परिय को मानता ही नहीं, नास्तिक रूप से मानता नहीं। सांख्य मत जैन मत में क्या फर्क है, ये परिणाम है ही नहीं, वो तो ऐसा मानता है, परिणाम है ही नहीं। जैन दर्शन परिणाम को मानता है, आत्मा में नास्तिक मानता है। परिय की अस्थि आत्मा में नास्ती, ऐसी आत्मा की अस्थि तीन बार आगे तो परिणाम तो है, परिणाम नवतत्व है, ये तो परिणाम मानता है। नवतत्व ने आपने तो नवतत्व ने मानिए छे, नवतत्व परिणाम मां छे मेरे में वो बात अलौकिक है, इसलिए असर से निर्दोष बात जय दर्शन का मत। आप समय में केवल भगवान ने जो जाना कुछ करता अपनी भक्ति, इसकी अस्थि बोले ज्ञान में आ रहे मत हो जाता। परिणाम मेरे में नहीं है, इसमें क्या दो पैदा हो गया, परिणाम है ऐसा संस्कार हो गया, परिणाम है संस्कार हो गया, और मेरे में है ऐसी मिथ्या मान्यता थी वो निकल गई। परिणाम है मगर मेरे में ऐसा मानता था, अभी परिणाम तो है मगर मेरे में नहीं है, तो परिणाम के साथ एक तो विशुद्ध आदमी है और आत्मा की अस्थि आप में परिणाम की अस्थि मेरे में नास्ती, ऐसी मेरी अस्थि। लेकिन निर्दोष तत्व है, कोई जात का दोष आता उत्पादित बता गया भूत परिय द्रव्यम इसलिए अस्थि नास्ति अनेक राज का आत्मा आत्मा पण है शरीर पड़े नहीं, आत्मा आत्मा पड़े है न पर्याय समय की पर्याय पड़े नहीं है, तो आत्मा आत्मा पड़े है देह पण नहीं है, तो देह की अस्थि हो गई मगर मेरे में नास्ती हो गई। देह की देह मेरे में नहीं इसका अर्थ क्या, देह का संस्कार कीजिए मगर देह मारा इसकी जो बुद्धि थी उसके लिए दूसरा वाक्य दिया है कि देह मेरे में नहीं है नास्ती है, तो देह के प्रति बहुत छू जाती है और भगवान आत्मा का लक्ष्य है। नास्ती वास्ते नास्ती पटी अस्थित आम आम का क्या पकड़े आम का पकड़ो के तू परिणाम ने તારામાં સ્થાપીને બેઠો છો મને તું એનો મમતા કરી ગયો છો અને એ મારા છે માની ગયો છો, એનો કરતા બુદ્ધિ તરફ છે, એ પરિણામ તારામાં નથી તો તને સ્વામી તો બુદ્ધિ જોઈ જશે, કરતા ભોગતા બુદ્ધિ જશે અને પરમાર્થ એ પર્યાય છે, એટલું જ મારું ધ્યેય નથી, પણ પર્યાયથી વેદ નાયક એ મારું ધ્યેય છે, ધ્યાનનું ધ્યેય જ્ઞાનનું ધ્યેય એ અંદર મારે પ્રશ્ન નંબર બે ઉપર બેઠા રહે किसी का है पूछने की जरूरत नहीं है, मैं पूछता नहीं हूँ, प्रश्न दे देना बस, नाम की कोई जरूरत नहीं। प्रश्न नंबर दे, उसमें ए और बी दो विभाग है, ये यथाख्यात चरित्र, यथाख्यात चरित्र और शारीरिक चरित्र, ચારિત્ર અને વેદક ચારિત્ર નો ભેદ સમજાવો, સમ્યક અને વેદક સમ્યક વચ્ચેનો ભેદ સમજાવો, યથાખ્યાત ચારિત્ર છે એ તો બારમા ઘોષણાએ યથાખ્યાત ચારિત્ર જેવું આત્માનું સ્વરૂપ છે એવું પરિપૂર્ણ ચારિત્ર્ય અવસ્થા લીધે એનું નામ કે ચારિત્રનો વિશેષણ પાંચ ભાવની અપેક્ષા એ તેને ચારિત્ર કહેવાય, એમાં ઉત્તમ નહીં પણ ચારિત્ર, અને પુરુષાની અપેક્ષા એ પૂર્ણ થઈ માટે યથાચાર પાંચ ભાવ ની અપેક્ષા એક થાય છે આ ગુણસ્થાન માં ગુરુ યથાચારિત્ર યથાચારિત્ર પૂર્ણ ધનુ કે પૂર્ણ નહી હોય પૂર્ણ નહીં પૂર્ણ એટલો ભેદ છે સભાવ ચારિત્ર પરિપૂર્ણ વેદ ચારિત્ર નામ ચારિત્ર નથી પરિપૂર્ણ નથી વેદક અને શોકમ તો છે તો એક પણ વેદક છે વેદક છે ને એ કેટલા ક્યાં ક્યાં ચિંતન છે કેટલો એ તો શોકમ પણ એમને એ વેદ નથી પૂછો એટલે જે તું પૂછું હોય એટલું કહું છું પછી તું પૂછતો એ બરાબર છે કે શોકમ ચારિત્ર વેદક માં એટલો વેદ છે કે વેદક થી એની જન્મ છે વેદક વાળો ટાઈપ કરી દીધું છે એટલું જ છે સાહેબ સમ્યક અને વેદક સમ્યક વચ્ચેનો ભેદ જેવો ચારિત્ર નો ભેદ છે એવો ભેદ છે વેદક સમ્યક છે ને એ સાહેબ ની સન્મુખ છે બરોબર એનું નામ વેદક છે બાકી કેવો શું કહેવાય અને એટલો કે સાહેબ અને વેદક માં ભેદ વેદક માં કર્મ નો ક્ષય નથી થયો અને સાહેબ માં તો કર્મ નો તૈયારી વાળો કેવાય વેદક તો ક્ષય નથી ક્ષયો સમ્યક દર્શન કેવાય દર્શન ગુરુ થઈ શોક સમજી ને ઉત્સવ નહીં કર્મ અભાવ બિલકુલ આપણે પાણીના ગ્લાસમાં જે વાત કરી પાણીના ગ્લાસમાં માટી નીકળી ગઈ છે તો પાણીના ગ્લાસ ને ગમે એટલું હલાવો તો ધોળ નહીં લાગે મેર નીકળશે આ તમે પાંચ ભાવ નું દ્રષ્ટાંત પાણી પડે તમે અમારા ગેસ છે ગેસ જોવી દેતા તો ગીત છે તો વાત બતાવ જીવના સાધારણ પાંચ ભાવ છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નિયંત્રણ કરતો તો પાંચ ભાવ કા પાંચ ભાવ મેં એક તો દ્રવ્ય રૂપ ભાવ હે જો પરમ પારણા ની ભાવ હે અનાદ્ય રૂપ હે ઉસકે સાથ કર્મ કા કોઈ સંબંધ દૈ ઉપસમ ક્ષય કે શોક પર કોઈ કર્મ કે સાથ આજ તક કોઈ હોય નહીં અને હોને વાલા નહીં કે એસા એક સામાન્ય સુધાર પર જો હે નિત્ય સુધ પરમાત્મા હે નામ પંચમ પારણા ની દ્રવ્ય કા ભાવ ચાર ભાવ પર્યાય निर्भाव संक्षेत्रोक्त पर्यटन वो पांच भाव जो है उसके लिए दृष्टांत दिया था कि जैसे पानी का गिलास है, पानी का जल का गिलास बराबर, जल का जो गिलास है जल तो ओरिजिन स्वच्छ ही है, स्वभाव से स्वच्छ ही है, स्वच्छ करना उसमें नहीं आता है, वो जल का पार्णानिक भाव जो प्रकाश संघ के बिना स्वभाव से निर्मल है स्वच्छ है उसका नाम ब्रिलियंट पार्णानिक भाव था। अच्छा वो पानी के साथ माटी का संघ होगा तो पानी जो ग्लास था मेला हो गया दौड़ा मलिन पानी दिखता है तो उसका नाम उदय भाव है, उदय के साथ संबंध होने वाला औदय भाव मेला, माटी निमित है अरे मेला पानी नहीं मिट्टी बनी है उसका नाम औदय भाव है। अच्छा अभी ग्लास में ऐसा रखो तो तू माटी की बैठ जाती है, बैठती बैठती ऊपर का जो भाग है पानी का सारा निर्मल दिखता है उसका नाम उत्सव हुआ, कर्म का उत्सव हुआ, माटी नीचे बैठ गए पानी निर्मल दिखता है तो वो पर्याय का भाव उत्सव है, वो थोड़ा हिल गया बोला थोड़ा हिला ज्यादा हिला नहीं थोड़ा हिला तो जो माटी नीचे बैठी थी मल पानी गिरी ने देखा गिरी सुपर दृष्टि से पानी बलि दिखता है उसका नाम चौक्रमा, माटी निकाल दो और पानी निर्मल हो गया तो उसका नाम चार पर्याय के साथ माटी का संबंध है। पंचम जो भाव है पानी का वो स्वभाव उसके साथ रिजल उसके साथ कर्म माटी का संग है ही नहीं चार भाव के परे थे ऐसा मैं चार भाव की अस्थि मेरे में ऐसी अस्थि नहीं है, यह चार भाव सिद्ध हो गया पर मेरे में नहीं है ऐसा भी सिद्ध हो गया तो मैं कौन हूं कि चार भाव करे तो अपना काम विभक्त नाम कई जातों का ज्ञान विभक्त नाम होता है कि कई जात का अज्ञान अभिज्ञान है ना अभिज्ञान वो अभिज्ञान विभक्त ज्ञान जैसे मिथ्या दृष्टि है मिथ्या दृष्टि को अभिज्ञान होता है देव पर्याय में और नाग पर्याय में वो जन्म से होता है जन्म से उसका दो कुमें एक अभिज्ञान जन्म से उसको वो अभिज्ञान भूखे जानने में आवे और वो समय भी है तो मुद्दा ही अभिज्ञान उसी पदार्थ को जानते हैं उसी पदार्थ जैसा ऐसा जानते हैं मगर वो मेरा ऐसा जानते अभिज्ञान मेरा नहीं है तो नहीं मानता जिसको जाने तो मेरा माने नहीं मानते इसलिए उसका नाम विभव खूब नाम हो गया और जी ज्ञान भी क्या ज्ञान ऐसा देव और नागरी में जन्म से होता है वो सम्य दृष्टि होता है उसको भी नागरी और देव में अभिग्रहण होता है तो वो समय हो गया विद्या नहीं है स्वर्ग में गया इधर से मत लेकर गया वहां अभिग्रहण हो गया तो समय उत्पन्न होता है ऐसे श्री महाराज स्वर्ग में गए इधर तो दो ज्ञान था सुमति और सुश्रुत दो संवेदता वहां जन्म लिया तो अभिज्ञान हो आप उधर तू है वो भी नहीं विभव नहीं संवेदन वो अभिज्ञान की कोई कीमत नहीं हुई और उसी पदार्थ को जान आत्मा को नहीं जानते इसलिए क्या उस कीमत
is
બહુમતી સુમતી પુત્ર તો આત્મા કો જાણતી અને સુમતી પુત્ર તો આત્મા કો જાણતે અધિજ્ઞાન મેં કુછ કે નહીં અધિજ્ઞાન મેં કુછ વો તો એ લબ્ધિ લબ્ધિ કોઈ ફાયદા નહીં અવધિ જ્ઞાન સે ફાયદા નહીં મન કોઈ જ્ઞાન સે ફાયદા નહીં વો દીધી નહીં હૈ કે દીધી હૈ દીધી નહીં મગર દીધી હૈ और प्रतिष्ठित को अपने को प्रसिद्ध करता है कि वो द्वितीय क्यों है उसके द्वारा कायम नहीं होता है। जब श्रेणी मानते हैं ना धनधर भगवान चार ज्ञान उसके पास श्रेणी मानते हैं तो अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान का उपयोग नहीं शुभ ज्ञान शुभ ज्ञान में जो ज्ञान वो तो एक ज्ञान में प्राप्त है उसको कुछ मार्ग पर को जानते थे ज्ञान ही नहीं सुख में नहीं अवधि ज्ञान होते मन पर ज्ञान उसका विषय पर है કરતા જીવ નથી રાગ કા કરતા જીવ નહીં લીધે રાગ કરના જીવ કા સ્વભાવ નહીં તો વો તો બરાબર સમજ મેં આતા પ્રશ્નકાર કહેતે ઇતની બાતો સમજ મેં છતા તો ભી રાગ હોતા હૈ તો જીવ મે ચેતન મે હોતા હૈ જડ મે તો હોતા નહીં ચેતન મે જીવ મે હોને પર ભી ઉસકા કરતા જીવ નહીં હૈ એ કેસે तो जो पहली दो नीति जिसको बैठ गई उसका प्रश्न ऐसा नहीं उठे पहली दो नीति नहीं बैठी ठीक है ठीक मेरी दो नीति क्या है राग का करता जीव नहीं राग करना और जीव का स्वभाव नहीं એ તો બરાબર સમજાય છે એ બરાબર સમજ મેં આયા હી નહીં જો આયા હોગા તો સમ્યક તત્વ હોતા હૈ વો સમ્યક તત્વ કે બાદ રાગ જીવ મેં હોતા હૈ ઉસકા કરતા હૈ કે બુદ્ધિ રહેતી નહીં બયા અચ્છા અભી ઉપર સે દૂસરા મેં પ્રશ્ન હોતા કે સમજો કે સમજ મેં તો આ ગયા અનુભવ નહીં હુઆ जहां तक ज्ञान प्रथा में तो राग का राग जीव में होता है और राग का कर्ता जीव है उसका क्या कारण समझे तो उसमें ऐसा रहस्य है मैं पहले दृष्टांत को समझ में आ गया दृष्टांत के बाद समझ में आ गया सब को जिसे जल है जल वो अग्नि का निमित्त से उसकी अवस्था उष्ण होती जल उष्ण नहीं होता है ध्यान रखना जल की अवस्था जिसने संग किया अग्नि का, ना इतना भाग में उष्णता होती है, तो अभी जल गर्म हो गया ऐसे कहने में आता है, जल गर्म हो गया स्नान कर लो समझे, और समय करती हो तो क्या करें, जल गर्म हो गया, जल की अवस्था गर्म हुई ऐसा नहीं कह रहे व्यवहारिक जल के बीच में, व्यवहार के बीच में व्यवहार की भाषा आती है, भाव अलग होता है, भाषा व्यवहारी होती है व्यवहार के साथ, तो ये जो जल की अवस्था गर्म हुई उसकी योग्यता, जल की पर्याय की योग्यता है भाषा हुई, उसमें अग्नि निमित्त है, अग्नि निमित्त है, जल की उष्णता नैमित्तिक है समझे, और उसका जो कारण है उष्ण होने का कारण वो अग्नि भी नहीं है अरे जल भी नहीं है, दस समय की योग्यता है, तो वो जो जल उष्ण का कारण हो जाए, जल उसका उष्ण का कारण हो जाए तो उष्ण ही नहीं है ठंडा हुए नहीं, और उष्ण पर्याय को वो बलात्कार से वो अग्नि गर्म करे तो स्वाधीनता पर्याय की रही नहीं, अभी क्या करना कि उसको व्यवहार ने से ये जल का परिणाम है उष्णता की पर्याय, की पर्याय के दो दृष्टि से देखना, वो पर्याय जो है वो पर्याय ने से व्यवहार ने से देखो तो ये जल की अवस्था है, मगर जल का स्वभाव की दृष्टि से देखो तो जल का स्वभाव तो शीतल है तो उसको तो उष्ण है, तो द्रव्य से पर्याय युति है तो उसका भाव नहीं है, लक्षण मिलता, जल का लक्षण तो शीतल है और उसका लक्षण उष्ण है, तो उष्ण लक्षण जल का भी तो किसका है अग्नि का है, तो वो पर्याय अग्नि की है कि जल की है कि अग्नि की है, तो उसके साथ एक तो मुझे छूट जाता है समझे, अभी उसका राग पर उतारना है, पर्याय में राग होता है वो जीव में होता है, जीव करता है चेतन में होता है, ऐसा प्रश्न है ना उसका खुलासा, फिर भी समझो कि मिथ्या सुखी पर्याय है माते लोग बनाने के विचार तो की पर्याय राग के प्रकार है, पाप राग है, विचार तो की पर्याय वो अशुभ राग है, वो जो राग है विचार तो की पर्याय पाप का परिणाम, वो का पाप का परिणाम कथन की जीवकार कथन की कुलकार है, तो कथन की जीवकार कथन की कुलकल का इसका क्या कारण कि वो जो अपना स्वभाव के संग नहीं परमता है और कर्म का लक्ष्य करके परमता है, तो पर का संग करके परिणाम स्वतंत्र पड़े तो वो मिथ्या का परिणाम का दोष वो दोष जीव का है, कर्म का दोष नहीं है, वो जो दोष प्रकट हुआ है दोष को स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल दोष जीव में होता ही नहीं है ऐसा नहीं है, दोष का स्वीकार करके अभी दोष टालने की विधि क्या, तो जब टालने की विधि बताते हैं तो ये तेरा परिणाम ये कुंडल का है, कुंडल का संग से हुआ पूर्व कर्म का उदय से हुआ तो अत्यंत अचेतन है तेरा परिणाम ये, तेरे साथ मिलना जुलना उसका लक्षण नहीं है, वो कुंडल के साथ मिलता है लक्षण, कुंडल की जड़ जुना कर्म राग भी उद्गम भी मूर्ति मैंने राग भी मूर्ति, मूर्ति का क्या कि अपना ज्ञान में जानने में आता है, इंद्रिय ज्ञान में जानने में आया ना क्रोध, जो इंद्रिय ज्ञान में जानने में आया तो मूर्ति को होता है, अब मूर्ति होता नहीं है, मूर्ति मूर्ति दूसरा कर्म का संचय हुआ का संचय नहीं हुआ तो कर्म करते जीवद्रत नहीं, ऐसा भेद ज्ञान करके राग से आत्मा जुदा हो जाता है, कर्म नहीं मैं करता करता कर्म की बुद्धि छूट जाती है। अच्छा तो राग कार्य तो है उसका करता कौन के खुद करो उसके साथ व्याख्या करो मेरे साथ नहीं नहीं ऐसा छूटा पड़ जाता राग से बिना मत करो तो क्या बात से बराबर समझे तो कोई दोष आता मजबूत नहीं है स्वभाव दृष्टि से देखो क्रांति से जीव का परिणाम पानी निकल गए तो जीव का परिणाम ज्ञान जीव जानता है कुंदल करता है जीव जानता है कुंदल को करता है करने वाला ऐसा वेद ज्ञान मतलब कोई एकांत न समझी जाए तो समझी न हो जाए इसलिए व्यवहार से जीव का परिणाम प्राय आगम होता है क्या का प्रश्न होता है और रेगुलर हो तो क्या था
डर गया
राग कुंडल का गिरने से आत्मा स्वच्छंदी बन जाएगा ऐसा सिकोहावाद में किसी को डर लगता है किसी लड़की को नहीं सिकोहावाद स्वच्छंदी होता है स्वतंत्र बन जाता है ज्ञान के अलावा क्या करे कुछ नहीं करे और कोई उपाय नहीं कि मैं ज्ञान का करने वाला नहीं हूं राग का करने वाला वो तो वो ही सोचता ही है उसका पक्ष में नहीं जाना वो घर सर कुछ तो सोच वो है क्या था राग जीव में होता है मैं करता हूं वो स्वतंत्र है और राग से मैं ज्ञान करने वाला वो स्वतंत्र है वो मार्ग में चले गए डरना नहीं पसंद से डरना नायक भाव से पर प्रमत प्रमत रहे के नायक बोलो नवी वृद्धि अपमत तो पमत हो ज्ञान को दूजो एक આજુબાજુ નો કોઈ મકાન મારું નથી આ મકાન મારો છે એ પ્રકૃતિ થઈ કે પછી આ મકાન મારો ને આ મકાન મારો ને જરૂર શું છે કે એને જેને નિશ્ચિત થઈ ગયો કે આ જ મકાન મારું છે ને આજુબાજુના મકાન મારા નથી એ જે મિશન વર્તતો હોય એને જરૂર નથી પણ ગરીબમાં આ બે મકાન આવી જાય ગરીબમાં વાળું મકાન ગાંડો એને કેવું ઉપાય રહી ગઈ આ સંસારો પ્રત્યે આ સંસારો આ ઘરમાં આવ્યો હો મારું મારું કરતો હતો ને इसलिए कि तरंग थी चाहे बकरा और वास्तविक है भक्तिनाथ की अनेक प्रवृत्ति बहुत પરપણે નથી તો પરમા મમતા થવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. હા, એકલાસ્તીમાં સિદ્ધિ ન થાય. સ્વપણે પણ છું ને પરપણે પણ છું એમ આવી જાય. સ્વપણે છું ને પરપણે નથી ત્યારે અતિ નિમતિ. પરિણામોની અસ્થિ મારામાં નાસ્તી એ મારી અસ્થિ. પરિણામ સીધો ગયા, પરિણામ ને ઉતારે છે જે સાયકલ માંથી સુરંગ એને થાય પાસ એ નવ તત્વ છે પણ મારામાં તો ક્યાં ઉમેર્યા, મારામાં શું કયા, એનામાં તો રાખ્યું કઈ અને સાંકી માંથી તો એનામાં રાખતા નથી. પરિણામ ને પરિણામ તરીકે રાખતા નહીં, એની ભૂલ થી જૈન દર્શન ને પરિણામ ને પરિણામ પણ રેખા પણ મારા મન એમ થયું. આ મકાન તારો છે, ગરીબ માં માં આવી જાય, ગરીબ માં આવે તારો સાડો થઈ જાય. ઇનકાર કરીને અતિનાથ તને ખબર નતો એટલે બાજુ બાજુ માં મકાન ના થયા તો ક્યાં બોલ્યો હતો, ઢોલા એ ચક્કો માર્યો સાહેબ ક્યાં ગાંડા એ છે એ ક્યાં ઘરમાં જાય પોતાનું નીચ ઘર તો નાયક તત્વ છે. મોટી ભૂલ છે. પર્યાય તારી રીતે લાભ ક્યાંથી થાય? વ્યવહારનો નિષેધ કરવાની શોખ માં વાત કરો છો, એ ગમતું નથી. વ્યવહારનો વ્યવહારનો નિષેધ જે તે રીતે કરો ત્યારે નીચે હાથમાં આવશે, નકર નહીં આવે નીચે હાથમાં. હૃદય શબ્દ છે, આત્મા કર્મ ને બાંધતો નથી, કર્મ નો ઉદય આવતો નથી, શુભાશુભે પરણતો નથી. તો શુભાશુભે પરણે નહીં તો કર્મ બંધાય ક્યાંથી આવે છે? ક્યાં મનુષ્યનો આયુ બંધાય ના યાર ગતિ નો આયુ ગતિ એ બાંધતો નથી. એ संस्कार नहीं है, ये जीव तत्व कोई भी अपेक्षा नहीं। आना कारण आम आए वो कारण की निरपेक्ष
उत्तर प्रेम आ रही है जब वो शुद्ध जीवन है।